हरे कृष्ण। और आज हमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोका नहंती न निबध्यते। कि जो कार्य करता हुआ भी ये सोचता है कि ये मैंने नहीं किया, मतलब अहंकार नहीं होता है उसके अंदर, क्योंकि वो एक दिव्य निर्देशन के अनुसार कार्य कर रहा होता है, भगवान के आदेशानुसार, शास्त्रों के अनुसार वो कार्य कर रहा होता है जो उसकी ड्यूटी है। जैसे आगे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, जैसे सेनापति, जैसे पुलिस वाला होता है, वो जो उनको आदेश होता है उसके हिसाब से वो किसी को मारते भी हैं, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी होती है, उसको अपनी ड्यूटी निभानी होती है। वो पुलिस वाला है और सामने अगर कोई अपराधी, कोई घनघोर बहुत ज्यादा अपराध कर रहा है तो उसे शूट करने का निर्देशन होता है, लेकिन उसकी बदली में उसको न्यायाधीश कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ाता, क्योंकि उसने हत्या नहीं की, अपनी ड्यूटी पालन की है। तो उसी तरह से अर्जुन भी ये सोच रहा था कि मुझे युद्ध से बचना, किसी तरह से बच जाऊं मैं, बस भगवान मुझे कोई त्याग का ऐसा रास्ता बता दे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप ना कर्म ना करने से बेहतर है कि अपना कर्म करो, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है उससे करो, और यदि तुम मेरे आदेशानुसार कार्य करोगे तो फिर तुम कभी भी बंधोगे नहीं, तुम्हें अपराध उसका नहीं लगेगा। तो फिर भगवान, लेकिन है ना, जब भी हम कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा भाव आता है कि मेरी कोई वैल्यू है जिसकी वजह से मैंने ये कार्य किया, यानी थोड़ा सा अपने अंदर अहंकार तो ना चाहते हुए भी आता है। इसी तरह जब ब्रह्मा जी की, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया कि आप सृष्टि का सर्जन करो, सृष्टि को बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान से कहा, अब मैं आपके आदेश से सृष्टि की रचना तो करूंगा, तो जाहिर सी बात है रचना करूंगा रजोगुण में, रजोगुण होगा उसके अंदर, इच्छा होगी तभी तो वो सृष्टि बनाएगा ना। और जब सृष्टि का रजोगुण के भाव के अनुसार मैं जब सृष्टि करूंगा तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मुझे सृष्टि नहीं करनी है, मुझे अहंकार आ जाएगा, और जब मेरे मन में ये अहंकार आ गया फिर तो मेरा पतन हो जाएगा, मुझे ये रजोगुण वाला कार्य मत दो कृष्ण। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी, तीसरे सिकंद में भागवत महापुराण में, थर्ड सिकंद में ये प्रार्थना आती है, बहुत बहुत बड़ी और बहुत ही महान प्रार्थना की है ब्रह्मा जी ने भगवान से, कहा कृपया मुझे ऐसी सुरक्षा प्रदान करें कि आपके आदेश अनुसार जब मैं सृष्टि करूं तो उसके संसर्ग से मैं आपके चरणों को ना भूलूं, मुझे ये कंटिन्यूस याद रहे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा के कारण कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई, क्योंकि संसार क्या मानेगा। जैसे शास्त्र कहता है, वेदों में आता है भाई, तीन मुख्य देवता, ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं और शिव जी संहार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को सारा संसार सृजन करता मानता है, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरे मन में भी, जैसे आता है ना मन में कोई बोलता है ना मैं बार बार कि भाई आपने इतना अच्छा कार्य किया, आपने इतना अच्छा कार्य किया, तो मन में कहीं कहीं ये बात बैठ जाती है कि हाँ देखो मैं कितना महान कार्य कर रहा हूँ। लेकिन भगवान से सदैव ये प्रार्थना करनी चाहिए कि यह जैसे जिस टाइम पर हमारे मन में ये बात आ जाती है ना कि यह महान कार्य मेरे द्वारा हुआ है, उसी टाइम पर हम अपने पद से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते। तो ब्रह्मा जी बोला कि मेरे ऊपर अगर आप मुझे संरक्षा की गारंटी देते हो, यदि आप मुझे संरक्षा के लिए कहते हो कि मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, तुम्हारे मन में कभी भी यह अभिमान नहीं आएगा कि मैं सृष्टा हूँ, मैंने बनाया है, तो जब तक जब आप मुझे इसी सुरक्षा प्रदान करोगे ना तब मैं ये कार्य करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बुद्धि के अंदर समाविष्ट होऊंगा और आप जब भी कोई सृजन करोगे, सृष्टि का उत्पादन करोगे, तो आपके मन में सदैव यही रहेगा कि इसका कर्ता आप नहीं हो, यानी आपके अंदर अहंकार भाव यह नहीं आएगा। जैसे भगवान ने कहा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य, और जब हमारे मन में ये भाव नहीं आता है कि मैंने किया, तो बुद्धि भी हमारी विचलित नहीं होती, बुद्धि उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, बस ये पता होता है कि मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। और लेकिन मूर्ख लोग क्या होते हैं, मूर्ख क्या हमेशा कहते हैं कि मैंने किया, इवन यहाँ तक होता है मूर्ख लोग जब कोई कार्य करते हैं और सफल होते हैं तो क्या कहते हैं कि मैंने किया, और यदि कोई असफलता उन्हें प्राप्त हो जाती, कोई अपराध हो जाता है तो बोलते हैं देखो मेरे भाग्य में ऐसा था, मेरे ये भगवान की है ना, जैसे भगवान की मर्जी है क्या कर सकते हैं, अब ऐसा हो गया। यानी अपराध अगर हो गया तो थोप देते भगवान के ऊपर, और अगर अच्छा हो रहा है तो डायरेक्ट से अपने अपने ऊपर सारा श्रेय लेते। जैसे एक ब्राह्मण था, तो एक ब्राह्मण उसने क्या किया था, एक खेत लगाया था। मैं आपको एक बहुत अच्छी सत्य घटना जो भागवत महापुराण में है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ब्राह्मण ने एक बहुत बहुत ही खूबसूरत खेत, मतलब सुंदर बागीचा बनाया। बागीचा में तरह तरह के फूल थे, इतने अच्छे से फूल लगाए थे, फल लगाए थे, वृक्ष लगाए थे, बहुत ही अच्छी सेटिंग की थी, एकदम सुंदर गार्डन बनाया था उसने। तो इतना सुंदर था कि कोई आता था ना जब इसके अंदर, तो फिर भी उसने क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की थी ना, तो उसको दुख लगता था कि कहीं ये पांव से कुछ फूलों को कुचल ना दे, कुछ मेरे बाग को खराब ना कर दे, क्योंकि आसक्ति जुड़ जाती है ना जिस चीज में हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कितना कि ये कोई खराब ना कर दे। तो उसको भी मन में बस ये होता था कि कोई खराब ना करे, और उसे दुख होता था, और दुख जो है ना वो क्रोध जन्म लेता था अगर कोई ऐसे कोई आ जाता था उसको खराब करता था। एक बार वो गार्डन में ना ऐसे ही सेटिंग कर रहा था, फूलों को पानी वानी दे रहा था कि एक गाय आ गई। गाय आई और उसने ऐसे तो फूलों को रौंदा, कुछ पौधों को रौंदा, और वहां पर गंध भी किया, मना मल मूत्र भी इत्यादि भी जाया किया वहां पर, और थोड़ा गंदा हो गया भाग। तो इसको इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, उसने क्या किया, गाय को निकाल रहा था और जोर से मना अपने क्रोध को काबू नहीं पा सका, और जैसे गलती से मना उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी गलती से उस गाय का वध हो गया। अब उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने ब्राह्मण हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत दुख हुआ। लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो अपना इस अपराध को छुपाने के लिए क्या बोल रहा है कि देखो, अब देखो हमारे शरीर में क्या है, जितने भी शरीर के जितने भी पार्ट्स है ना, पार्ट्स जितने भी इंद्रियां, उनके अलग अलग देवता होते हैं। जैसे आंखों के देवता सूर्य देव होते हैं, कर्णों के देवता अश्विनी कुमार होते हैं, उसी तरह से हाथों के देवता इंद्रदेव होते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये देखो इंद्र देवता की गलती है, ये हाथों के देवता इंद्र है ना, उनसे गलती हो गई है, ये इंद्र देवता की गलती के कारण ये गौ हत्या हो गई, यानी कि वो पूरा का पूरा सारा दोष जो है वो इंद्र देव को डाल रहा था कि ये सारी गलती जो है गौ हत्या जो है वो मेरा, इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हाथों के देवता इंद्र देव है तो उन्होंने किया। अब क्योंकि वो ब्राह्मण था, प्रचार करता था, तो सारे लोग उसको सुनते थे, और अब तो कोई भी कोई अपराध करेगा तो यही बोलेगा ना कि हाथों के इंद्र है, तो इंद्र ने ही अपराध किया, क्योंकि सब जानते थे ब्राह्मण तो सच बोलता है। जब इंद्र को ये पता चला कि ये ब्राह्मण मेरे नाम पे अपराध करा है और मेरा नाम बदनाम कर रहा है कि इंद्र ने किया, तो फिर इंद्र जो है वो एक बहुत ही साहूकार व्यक्ति का वेश धार कर उसके घर पे, मतलब एक रईस व्यक्ति का वेश बनाकर उनके घर पे आए, और बोला मैंने सुना है कि आपने बहुत ही सुंदर बागीचा बनाया है। तो क्योंकि उसको अपना बागीचा बहुत सुंदर लग रहा था, और उसको लगा कि इतना फेमस है कि इतने रईस लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं मेरे बागीचे के, तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहा कि हाँ मेरे घर मैंने बहुत ही सुंदर बागीचा बनाया है। तो उस रईस व्यक्ति ने बोला कि मुझे वो बागीचा देखना है। तो वो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, चलो चलो एक एक चीज करके मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सुंदर बागीचा है। तो ब्राह्मण जो है वो उस रईस व्यक्ति को लेकर अपने बागीचे में गया। रईस व्यक्ति जो कि इंद्रदेव थे वो एक एक चीज को देख रहे थे। पहले बोला ये इतनी सुंदर क्यारियां लगी हुई हैं, इनकी सेटिंग कितनी अच्छी हुई है, ये किसने बनाया है? तो ब्राह्मण बोला ये मैंने बनाया है, मैंने। वापस आगे गए तो इतने खूबसूरत फूल थे, तो बोला ये फूल इतने अलग अलग डिजाइन के, ये सब किसने लगाए, इतने यहाँ पर कितना सुंदर वातावरण हो रहा है, ये किसने बनाया? तो बोला ये मैंने बनाया है। और फिर बोला कि ये जो सेटिंग की हुई है ना, जैसे द्वार से अंदर आना और ये सब, ये फाउंटेन लगा हुआ है और ये सब इतनी अच्छी से जो यहाँ पर कारीगरी की है, वो किसने की है? तो उसने कहा ये सब मैंने किए। बोला किसके जरिए किए? बोला अपने इन्हीं हाथों के जरिए किए, ये सब मैंने किए। तो बोला ये सारी कारीगरी तुमने अपने इन हाथों के जरिए किए, तुमने किए? तो बोला हाँ। बोला बाकी ये सारी चीजें तुमने की, और वही गौ हत्या थी वो मैंने की थी। सामने इंद्र खड़े थे, उसको देखकर वो पश्चाताप उनको हो रहा था कि वाकई में हम जो कार्य कर रहे हैं, अपराध जो है ना वो सर किसी और के लगाते हैं और अच्छा कार्य का क्रेडिट हम अपने ऊपर लेते हैं, बल्कि हमें उल्टा करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का सही उपयोग करेंगे यदि और शास्त्रों का अध्ययन करके यदि हम कार्य करेंगे तो अपराध की संभावना ही नहीं है। यानी कि अगर अपराध हो रहा है तो हमारी गलती से हो रहा है, क्योंकि हमने सही उपयोग नहीं किया भगवान की दी हुई क्षमताओं का, इसीलिए हमसे अपराध हो गया। तो हमें हमेशा क्रेडिट देना चाहिए अच्छे कार्य का गुरु और गौरंग को, और यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है तो उसकी क्षमा मांगनी चाहिए, उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए कि भगवान तुमने इंसान बनाया, बुद्धि दी, ये सब समझ दी, शास्त्र दिए, उसके बावजूद भी मैंने ये गलती की, ये सारी की सारी मेरी अपनी हवस के कारण हुई है, ये सारा का सारा दोष मेरा है। लेकिन यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो वो सब आपकी कृपा है कि मुझे इतनी सुंदर बुद्धि प्रदान की है जिसके जरिए से मैं ये सब अडॉप्ट कर पा रहा हूँ, मैं सब ग्रहण कर पा रहा हूँ, मैं यह सब अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ। वेदों में ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है ना, इसको 30 धार के बराबर बताया गया है कि हर समय एक ना ऐसा लगता है कि खौफ है पराजय का, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पराजय हो जाए, हम अपने पथ से निकल जाएं, पराजय का भय है। परंतु जो पूरी तरह से परमात्मा को पूरा अपना गाइडेंस हमेशा बनाते हैं कि गुरु और गौरंग सदैव मेरी रक्षा करेंगे, सदैव वो मेरा साथ देंगे, हर समय सुरक्षित रहता है वो, और माया कभी भी उसको हरा नहीं सकती, वो कभी पराजय नहीं हो सकता माया के द्वारा। लेकिन यदि एक सेकंड के लिए भी हमें यह अहंकार हो जाए या हमारे हृदय में ये बात आ जाए कि मैं सक्षम हूँ और मैं कर सकता हूँ माया को हराने का कार्य, तो उसी समय हमारा पतन हो जाएगा। तो हमें हमेशा ये भगवान की इस श्लोक को ना याद रखना चाहिए। भगवान ने कहा है यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वासि मान लोका नहंती न निबध्यते। यदि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं होती है, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, यानी कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नियत कर्म कर रहा है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधता है। फिर ना जब नियत कर्म कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारा इसके अंदर कोई लालच नहीं, कोई अभिप्राय नहीं, कोई मफाद नहीं, कोई गर्ज नहीं, तो जाहिर सी बात है उससे बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बहुत सुंदर समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। यानी कि अहंकार क्या होता है? मैं, ठीक है, अब मैं ये कार्य करता हूँ तो ये अहंकार है, बट ये भी अहंकार है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। यानी कि मैं आ गया ना सेंटर में, जब अहंकृत भाव आ गया ना, मैं करने वाला हूँ मुझे अपराध लगेगा, यानी उसमें भी अहंकार भाव आ गया ना, मैं कुछ करता ही नहीं, केवल कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपने नियत कर्मों को पूरा कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। जब ये बोलना कितना आसान है, लेकिन ये बात को अडॉप्ट करना कितना मुश्किल है, या बात को ग्रहण करना कितना मुश्किल है कि कार्य करते हुए भी हम ये सोचें कि मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमेशा श्री रूपा जी भगवान को कहते थे ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, क्योंकि माया जो है उसके जो ये तीन गुण है ना, रजोगुण में जब रहकर हम कोई कार्य करते हैं तो रजोगुण की सहायता लेनी पड़ती है हमें, क्योंकि इच्छा उत्पन्न करनी होती है कार्य करने के लिए। और जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो फिर हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि इस चीज को मैंने किया है। तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करें, अपना संरक्षण प्रदान करें, कि हमारे हृदय में कभी भी ये भाव ना आए या अहंकार ना आए कि मैं कर रहा हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अर्जुन के मन में अगर ये भी इच्छा आ गई थी ये युद्ध नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी एक अहंकार था। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था कि मैं करता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि बेला, पहले बताया कि बेटा देखो पांच चीजें आपको कर्म करवाती हैं, यह शरीर अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक करणम च पृथक विदम विविदाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, के सबसे पहले यह शरीर, फिर आत्मा और फिर आपकी इंद्रियां, अलग अलग किस्म की चेष्टाएं यानी योजनाएं, लोगों का सहयोग सहायता जो भी बुद्धि है वो मिलकर अलग अलग टाइप की योजनाएं होती हैं, और उसके बाद दैवम चैवात्र पंचमम। पंचम क्या है? देवता, जो देवता, देवा मतलब परमात्मा जो भगवान स्वयं है, जब तक उन सब का सहयोग प्राप्त नहीं होता तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन तुम अपने आप को कर्ता कैसे मान रहे हो? लेकिन उसे अपने भीतर तथा बाहर परम आत्मा यानी परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था, अर्जुन ने नहीं किया था विचार, इसलिए भगवान ने उसको बताया। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? यहाँ पर श्री गोपाल जी बोल रहे हैं कि अगर आपको पता हो, जैसे घर में भी हम लोग है ना, बच्चे घर पे जब मम्मी नहीं होती है ना, कोई काम गलत काम कर रहे होंगे, टीवी बस आराम से बैठ रहे होंगे, कचरे इधर फेंक रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, मतलब बस अपनी इंद्रिय तृप्ति ही सोच रहे होंगे, लेकिन देखेंगे कि अभी मम्मी बैठी हुई है तो कोई भी कचरा वचरा फेंकेंगे तो मम्मी डांटेगी, तो वो सारा काम जो है वो सेटिंग से करेंगे कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करनी। तो उसी तरह श्री प्रभुपाद जी बोले अगर कोई ये नहीं जाने कि कोई परम निर्देशन है तो वो कर्म सही कार्य करेगा क्यों, अपनी ड्यूटी क्यों पूरी करेगा? वो ड्यूटी पूरी करेगा ही नहीं, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगा। लेकिन आगे बताया कि जो व्यक्ति कर्म के उपकरों को कर्ता रूप में, अपने को और परम निर्देशन के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। जब जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है, भगवान ने जो आदेश दिया है, जो शास्त्र दिए हैं, वह कार्य करना मेरे लिए आवश्यक है, तो फिर वो कार्य जरूर करेगा, सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी रियलिटी पता है, ज्ञान है, तो मोहग्रस्त नहीं होता है। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अपराध के कारण बता रहे हैं कि जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप यानी कि अपनी पर्सनल सेल्फ इंद्रिय तृप्ति या फिर है ना खुद गर्जी के जो कार्य होते हैं ना, जिसमें सिर्फ अपनी गर्ज या अपनी इच्छाओं को पूरा करना जो कार्य होते हैं ना, तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय, वो सब कैसे होती है कि सिर्फ खुदगर्जी के कार्य करना शुरू कर देता है मिथ्या अहंकार कि मैं करने वाला हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ उससे, और ईश्वर विहीनता का मतलब होता है कि भगवान देखने वाला कुछ नहीं है, उनके लिए क्या करना। आजकल 99% लोग यही सोचते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं। अगर उनको बोलो ना भगवान की भक्ति करें तो बोला हाँ बस भक्ति करते रहे, बाकी सारे ये दुनिया के